जयधवला पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम श्रद्धात्मने नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सवसाहूणं अनुभाग भागमेतो विजत्थदोषस्य संभवो नत्ति संपणनीय जिनराहं संकममनुभाग गोयरंगोच्चम।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक, यह भी बंधक नाम का अर्थाधिकार है, जो 6वां अध्याय अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम अनुभाग संक्रम की बात चलेगी। यहाँ पर अभी हमने जो मंगलाचरण देखा है, अनुभाग भाग में तो अनुभाग शब्द पर श्लेष जिसको कहते हैं, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ होते हैं, तो अनुभाग भाग में तो भी जत्थ दोषस्य संभवोनति। यहाँ अणु का अर्थ अणु के बराबर, यानी इतना छोटे में छोटा जो अणु होता है, कि जिनमें अणु के जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद के बराबर भी, केवल अणु के बराबर नहीं, अणु में भी उसका अविभाग प्रतिच्छेद लिया, छोटे में छोटा अंश, उसके बराबर भी दोष संभव नहीं है। हम तो अणुमात्र भी राग नहीं, ऐसा तो हमने सुना है। तो यहाँ अनुभाग यानी अणु का भी भाग किया, किस अपेक्षा भाग किया, भाव की अपेक्षा, क्योंकि प्रदेश की अपेक्षा तो उसका भेद संभव नहीं है। तो जघन्य विभाग प्रतिच्छेद जितना भी दोष जिनमें नहीं है, संभव नहीं है, उन जिननाह यानी उन जिननाथ को नमस्कार कर तम जिननाणम जिननाहम प्रणमीय। अब कहते संक्रमम अनुभाग गोयरम वोच्छम, अनुभाग संक्रम नाम का अधिकार का कथन करता हूँ, यानी अनुभाग के ऊपर उन्होंने श्लेष किए। वह अणु का भाग यानी अविभाग प्रतिच्छेद लिया, और यहाँ अनुभाग जो कर्मों का अनुभाग है उसकी बात है। देखो कैसी उनकी यानी बुद्धि की प्रगल्भता है ना, वहां पर भी स्थिति के बारे में भी ऐसे उन्होंने बातें की थी। अभी हम यहाँ जो हमने मंगलाचरण देखा है, थोड़ा हम विषय परिचय को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू में तो उत्तर प्रकृति मूल प्र ये स्थिति संक्रम की ही बात है, 14 पृष्ठ तक, विषय परिचय के 14 पृष्ठ तक। तो स्थिति संक्रम जो हमने अभी पुस्तक देखी है उसी की बात यहाँ पर है। अनुभाग संक्रम 14 पृष्ठ पर है विषय परिचय के। हाँ देखते हैं यहाँ कर्मों की अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाम अनुभाग है। और उसका अन्य स्वभाव रूप बदल जाना अनुभाग संक्रम है। जितना वो कार्य कर सकता है वो बदल जाना उसका, उसको कहेंगे अनुभाग संक्रम। इसके मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम, ऐसे दो भेद हैं। जैसे हमने स्थिति में देखे थे, उनमें से मूल प्रकृति का अपकर्षण और उत्कर्षण के द्वारा अनुभाग का बदल जाना, जब अपकर्षण उत्कर्षण होता है तो मात्र स्थिति का हुई बात नहीं है, अनुभाग में भी होता रहता है, उसको मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम है कहेंगे। तथा उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग का उत्कर्षण अपकर्षण और अन्य प्रकृति संक्रम के द्वारा तीनों ही लेता है। मात्र उत्कर्षण अपकर्षण ही अन्य प्रकृति रूप हो जाना उसको भी अनुभाग संक्रम में ले लिया है, जैसे स्थिति संक्रम में भी लिया था हमने, वह उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम है। इस प्रकार उक्त व्याख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पर अनुभाग संक्रम से उत्कर्षण अपकर्षण और अन्य प्रकृति संक्रम, इन तीनों प्रकार से अनुभाग का परिवर्तन इष्ट है। अनुभाग का परिवर्तन होना यही अनुभाग संक्रम है। उसमें सर्वप्रथम अनुभाग अपकर्षण का स्पष्टीकरण करते हैं। अनुभाग अपकर्षण ऐसा नियम है कि जिस स्पर्धक का अपकर्षण होता है उससे नीचे अनंत स्पर्धक अति स्थापना रूप होते हैं। देखो हमने जब स्थिति में अपकर्षण देखा था तो कितना था, आवली प्रमाण निषेक छोड़कर अति स्थापना छोड़कर उसके नीचे उसका निक्षेप होता है। अनुभाग में जिस स्पर्धक का अनुभाग घटना है यानी वे परमाणु नीचे के अन्य स्पर्धक रूप हो जाएंगे, कहते बीच में कितने छूट जाते अति स्थापना, अनंत अनंत स्पर्धक, तो ओरिजिनल में कितने अनंत अनंत होने चाहिए। तो जिस स्पर्धक का आकर्षण होता है उससे नीचे अनंत स्पर्धक अति स्थापना रूप होते हैं और उनसे नीचे अनंत स्पर्धक निक्षेप रूप होते हैं, उसका भी प्रमाण और बड़ा होगा अनंत। इसलिए प्रारंभ के जघन्य निक्षेप और जघन्य अति स्थापना रूप स्पर्धकों का अपकर्षण कभी नहीं होता, यह सिद्ध होता है। जिसको जघन्य निक्षेप कहेंगे और जघन्य अति स्थापना कहेंगे उनमें से तो अपकर्षण नहीं होगा। यहाँ जघन्य निक्षेप ध दिख रहा है ना, और जघन्य अति स्थापना से उपरिम स्पर्धक की अपेक्षा यह कथन किया है। जब हम कहेंगे ऊपर का जो स्पर्धक है उसकी अपेक्षा कथन है, क्योंकि हर एक स्पर्धक में से अपकर्षण होगा तो उसके अपने अपने नीचे समझ लेना। उस स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अन्य सब स्पर्धकों का अपकर्षण होना संभव है, इतना विशेष है। व्याघात को छोड़कर सर्वत्र अतिस्थापना तो एक समान रहती है, मात्र निक्षेप में वृद्धि होती है। अब ये जो हम पढ़ेंगे तो ये बात और सरल हो जाएगी। यह तो शॉर्ट में बता रहे हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना का प्रमाण कितना है इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का जितना प्रमाण है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर किसको कहते हैं?
जब अविभाग प्रतिच्छेद डबल हो जाते हैं।
नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद डबल होना उसको तो एक दूसरा स्पर्धक कहेंगे।
अच्छा, या प्रदेश,
प्रदेश जब आधे होते हैं नीचे से ऊपर तक चले जाओ। देखो हम स्पर्धक काहे से बने, स्पर्धक किसको कहना है, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे, और वर्गणा किसको कहेंगे, समान अविभाग वाले कर्मों के
समूह को
यानी कर्म प्रदेशों को। तो ये हमारे स्पर्धक है मान लेते, एक स्पर्धक, तो इसमें क्या होगी, वर्गणाएं होगी। तो वर्गणा की रचना हम ऐसे थोड़ी टेपरिंग दिखाते हैं, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कम होती चली जाती है। इसको एक स्पर्धक कहेंगे तो पूरे ऊपर तक वर्गणाएं नहीं पाई जाती, ऊपर अंतर रहता है, क्योंकि यहाँ जितना अविभाग प्रतिच्छेद था उससे डबल हो जाए तो वहां से वो दूसरे स्पर्धक कहलाएगा, उसमें भी ऐसे ही वर्गणाएं होगी। परंतु ये जो वर्गणा है ना, इसमें प्रदेश कम होते चले जाते हैं, तो यहाँ जितने तक आए उसी को यहाँ से ले लेना, ऐसा यानी यहाँ इसको रखेंगे एक के ऊपर, पहले स्पर्धक की वर्गणाओं के ऊपर दूसरे स्पर्धक की वर्गणा रखेंगे तो निषेक जैसी रचना दिखाई देगी। ऐसे बीच में ऐसा टेपरिंग नहीं करना, क्योंकि यहाँ बीच में कोई वर्गणा ही नहीं है। यहाँ जो अंतिम वर्गणा है उससे एक छह कम वाली ऊपर की वर्गणा होगी। हर एक वर्गणा में परमाणुओं की संख्या एक एक छह से घटती चली जाती है और अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ जितना अविभाग प्रतिच्छेद है दूसरे स्पर्धक में दो गुना होता है, तीसरे स्पर्धक में तीन गुना, चौथे स्पर्धक में चार गुना, परंतु प्रदेशों की संख्या प्रति वर्गणा कुछ कम होती चली जाती है। पहले स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में जितने प्रदेश है उससे एक चय कम होगा, यहाँ पर बीच वाला जो अंतर है उसमें टेपरिंग नहीं समझना। तो अकेले वर्गणा वर्गणा को कंसीडर करेंगे अलग लाइन में तो उसकी गोपुच्छा जैसी रचना दिखाई देगी। तो जहां जाकर वो आधी होती है संख्या, उसमें तो अनंत स्पर्धक चले जाते हैं, तो उन अनंत स्पर्धकों को कहेंगे ये एक गुणहानि, किसकी अनुभाग की अपेक्षा गुणहानि कहेंगे। जब स्थिति की अपेक्षा गुणहानि कहते थे तो वहां निषेक रचना थी और निषेकों में परमाणु की संख्या जहां आधी होती उसको एक गुणहानि कहा था। यहां अनुभाग की रचना में जो स्पर्धक है उसमें प्रति वर्गणा चय कम हो जाता है परमाणु की संख्या का, वो जब आधा हो जाता है तो उसमें कितने स्पर्धक आते हैं इसे तो अनंत हो जाते हैं, उसको कहेंगे एक गुणहानि। उसी का नाम है एक गुणहानि प्रदेश स्थानांतर, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर। एक यानी एक संख्या बताई, प्रदेश गुणहानि, प्रदेश गुणहानि ने प्रदेशों की संख्या आधी हो जाना, गुणहानि ने गुणित प्रमाण में हानि, ये दो गुणहानि हो गई ना, यानी आधा होना उसको कहेंगे दो गुणहानि। हम विषय परिचय के 14 पृष्ठ पर देख रहे थे अपकर्षण, अनुभाग अपकर्षण को, वहां नीचे से छठी लाइन सातवीं लाइन चल रही थी। तो कहते हैं एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का जितना प्रमाण है उससे जघन्य निक्षेप का प्रमाण अनंत गुना है। ये सारी गुणहानि भी अनंत स्पर्धकों की होगी और जघन्य निक्षेप जिसमें कम से कम जिन स्पर्धकों में निषेकों ऊपर के माल आ जाएगा उसका अनुभाग का, वे भी अनंत गुणा है। हाँ देखो ये प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का क्या स्वरूप है, अपनी भाषा में एक गुणहानि, अनुभाग बढ़ते हैं परंतु प्रदेशों की संख्या घटती है, नंबर ऑफ परमाणु घटते हैं, अनुभाग बढ़ता है। अभी हमने देखा ना, देखो ये पहला स्पर्धक है, प्रतिवर्गणा प्रदेशों की, इसलिए प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर परंतु किसमें, स्पर्धकों में, स्पर्धकों में प्रतिवर्गणा प्रदेश कम होते चले जाते हैं। ये पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, इस तरह से। तो जहां जाके वो संख्या आधी हो जाएगी, प्रदेशों की यानी परमाणुओं की संख्या जिस वर्गणा में आधी होती है, किसके किससे साथ कंपेयर करना, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा, पहले स्पर्धक की पहला यानी नीचे का पहली वर्गणा जिसमें अनुभाग मिनिमम है, ऊपर की ओर बढ़े जाएंगे तो अनुभाग अधिक अधिक होता है। हाँ, ये स्पर्धक की रचना, वहां निषेक के साथ कंपेयर नहीं करना, ऐसा नहीं समझना कि वर्तमान निषेक में कम अनुभाग है ऊपर ज्यादा, ऐसा नहीं है। स्थिति की अपेक्षा ये रचना नहीं है, ये अनुभाग की अपेक्षा रचना है। जैसे स्कूल में कभी कभी अल्फाबेट के अनुसार हमें लाइन बनानी पड़ती है, नंबर देते हैं, और कभी कभी हाइट के अनुसार, तो वो अलग अलग है ना लाइन, तो यहाँ ऐसा ही समझना। जब स्पर्धक जब कहेंगे तो यहाँ मात्र अनुभाग को हम कंसीडर कर रहे हैं, वो कब उदय में आ रहा है, कौन से निषेक में परमाणु है, ये बात यहाँ नहीं समझनी। जब नीचे और ऊपर कहेंगे तो नीचे यानी मंद अनुभाग, ऊपर यानी तीव्र अनुभाग। अब ये परमाणु वर्तमान निषेक में हो सकते हैं या ऊपर वाले निषेक में भी हो सकते हैं, यानी स्थिति रचना अलग है, अनुभाग रचना अलग है। तो यहाँ प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का अर्थ होता है गुणहानि, कौन सी गुणहानि, अनुभाग वाली गुणहानि, एक होती है स्थिति वाली गुणहानि। वहां निषेक निषेक प्रति एक एक जैसे घटता है और यहाँ अनुभाग की गुणहानि, अनुभाग घटने की बात नहीं है, अनुभाग बताने वाली जो वर्गणाएं हैं, प्रति वर्गणा एक एक जैसे परमाणु की संख्या कम होती है, जहां जाके वो आधी होगी। कितनी वर्गणाएं, इसमें भी अनंत है, दूसरे स्पर्धक में अनंत, तीसरे स्पर्धक में अनंत, चौथे स्पर्धक में अनंत, ऐसे अनंत स्पर्धक जाने पर गुणहानि होगी, तो उसको कहेंगे एक गुणहानि। उसी का नाम है प्रदेश गुणहानि स्थानांतर। केवल गुणहानि कहो या प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहो, एक ही बात है। तो एक गुणहानि कहने के बदले यहाँ एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का, एक प्रदेश ऐसा नहीं लेना, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, क्योंकि प्रदेशों की अपेक्षा आधा हुआ है।
इसी को हम एक प्रदेश गुणहानि को हम एक अनुभाग
अनुभाग, एक अनुभाग अनुभाग की अपेक्षा गुणहानि, अनुभाग रचना में स्पर्धकों की गुणहानि, अनुभाग रचना में गुणहानि, अनुभाग में हानि नहीं हो रही है।
हाँ,
हो रही है तो प्रदेशों में।
हाँ,
परंतु अनुभाग के रचना में
प्रदेशों
की गुणहानि। हाँ, देखो हम पहले देखा था ना, यहाँ 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, अविभाग प्रतिच्छेद 100 है, वहाँ से 100 से लेकर 120 तक ये 20 वर्गणाएं हैं, मान लेते हैं। फिर जहाँ जाके अनुभाग 200 हो जाता है,
दूसरा स्पर्धक हो गया,
वहाँ से दूसरा स्पर्धक है, परंतु ये बीच में 121 से 199 तक की कोई वर्गणाएं है ही नहीं एग्जिस्टिंग में, परंतु अभी इसको यहाँ पर रखेंगे 200 वाले को तो इस तरह से रचना हो जाएगी
गोपुच्छा का,
क्योंकि उसमें एक एक चय कम होता है, यानी 100 से लेकर 120 अनुभाग वाले हैं यहाँ पर, फिर ये 200 वाले 200 से लेकर 220 समझते हम, ऐसे 300 से लेकर 320, हर एक में अनंत अनंत वर्गणा है, परंतु बीच में गैप है, परंतु वो गैप कंसीडर किए बिना सभी की वर्गणा एक के ऊपर एक रखो तो उसमें प्रदेशों के यानी परमाणुओं की संख्या चय से घटती चली जाती है, प्रतिवर्गणा अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़ता है, परंतु यहाँ जो 120 नंबर की वर्गणा है और यहाँ पर जो ये वर्गणा है, यहाँ ये 20 नंबर की है ना, 100 से लेकर 121 समझो इसको, उसके ऊपर इसको रखना है, परंतु स्पर्धक ये दूसरा हो जाता है क्योंकि यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद एकदम से बढ़ जाता है, इसकी जो अंतिम वर्गणा है, पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गणा और दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, इनमें प्रदेश तो एक से ऐसे ही कम है, परंतु अविभाग प्रतिच्छेद कितना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नीचे वाली वर्गणा से दो गुना हो जाता है, तो ऐसे अनंत स्पर्धक जाने पर ये प्रदेश गुणहानि होती है, प्रदेशों की गुणहानि। कहते जघन्य निक्षेप जो प्रमाण है, जितने स्पर्धकों में वो घटकर अनुभाग किए हुए परमाणु दिए जाते हैं वो तो और अनंत है ज्यादा, और उससे भी जघन्य अति स्थापना का प्रमाण अनंत गुना है, जिसमें नहीं दिया जाता वो स्पर्धक उससे भी अनंत गुणे हैं। यहाँ अनुभाग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर अनुभाग की अपेक्षा ही प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का विचार करना चाहिए, चाहिए, क्योंकि जब हमें अभी तक आदत हो गई ना, जब गुणहानि कहते हो तब हम निश्चय की याद आते हैं, गुणहानि तो एक टर्मिनोलॉजी है गणित की, तदनुसार जहां प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से लेकर उत्तरोत्तर अवस्थित चय की हानि द्वारा, अवस्थित चय की हानि देखी ना हमने, अवस्थित यानी उतना का उतना फिक्स, उतनी की उतनी हानि चली जाती है, प्रति वर्गणा उतनी की उतनी हानि होती है, तो अवस्थित चय की हानि द्वारा दूनी हानि हो जाती, दो गुना हानि होना यानी आधा हो जाना, प्रमाण आधा होना, दो गुना हीन का अर्थ क्या है, आधा
प्रदेशों का,
उस अवधि तक के अध्वान की यानी वहां तक के नंबर ऑफ स्पर्धकों की प्रदेश गुणहानि स्थानांतर संज्ञा है। ख्याल में आई अभी बात, इस प्रदेश गुणहानि स्थानांतर में अभव्यों से अनंत गुणे अनंत स्पर्धक होते हैं। ओहो, ऐसी नाना गुणहानि होगी, एक गुणहानि में इतने अनंत स्पर्धक, और ऐसे पूरे जो अनुभाग रचना है उसमें स्पर्धक कितने होते हैं, तो जो नाना गुणहानि प्रमाण होगी, तो नाना गुणहानि का नंबर ऑफ नाना गुणहानिया मल्टीप्लाइड बाय एक गुणहानि का प्रमाण, तो टोटल स्पर्धकों का प्रमाण आएगा। अभव्य कितने जीव होते हैं याद है लक्ष्मी बहन? अभव्य जीवों की संख्या कौन सी है, कौन सा अनंत है? हाँ जघन्य युक्तानंद, परितानंद नहीं, परितानंद तो मिनिमम पॉसिबल अनंत है, जघन्य युक्तानंद उससे भी अनंत गुणे। हाँ जघन्य परितानंद रेस्ट जघन्य परितानंद इज इक्वल टू जघन्य युक्तानंद, ये अभव्यों की संख्या है, उससे भी अनंत गुणे स्पर्धक एक गुणहानि में होते हैं। इससे जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना का प्रमाण अनुभाग की अपेक्षा कितना है यह स्पष्ट हो जाता है, वो कितना अनंत होगा यह भी स्पष्ट हो जाता है। यह तो जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना का खुलासा है। उत्कृष्ट अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षेप का विचार करते हुए वहां बतलाया है कि जघन्य अतिस्थापना से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक अनंत गुणा होता है। उत्कृष्ट अतिस्थापना नहीं कहा, उत्कृष्ट अनुभाग कांडक, जहाँ अनुभाग कांडक होते हैं ना, जैसे हमने देखा है स्थिति कांडक घात होते हैं, उसी समय अनुभाग कांडक घात भी होते चले जाते हैं। जैसे उपशम श्रेणी में भी हमने देखा था, उपशम श्रेणी नहीं, उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के पहले प्रायोगिक लब्धि में आते ही एक बड़ा से बड़ा स्थिति कांडक घात तो होता ही होता है, अनुभाग कांडक घात भी होता है। किसमें होता है? अप्रशस्त प्रकृतियों में होता है। अनुभाग घटेगा किसमें? अप्रशस्त में। प्रशस्त का तो अनंत गुणा बढ़ेगा, उसमें उल्टा है ना। क्या कहते हैं, यहाँ अल्प बहुत्व से हमें वो अनंतता की थोड़ी वैल्यू समझ में आती है, मैग्नीट्यूड के। जघन्य अति स्थापना से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक अनंत गुणा होता है और उससे एक वर्गणा कम उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है, उसमें एक वर्गणा कम कर दो तो उतनी उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक की अंतिम वर्गणा के पतन के समय ही प्राप्त होती है, कारण कि जब अंतिम वर्गणा का पतन होता है तब उसका निक्षेप अंतिम वर्गणा के पतन के साथ ही निर्मूल होने वाले उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को छोड़कर ही होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। अब ये तो जब प्रकरण आएगा तब वहाँ उसकी हम अधिक चर्चा करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर अंतिम वर्गणा से ही उत्कृष्ट अनुभाग कांडक प्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना बतलाई है। उत्कृष्ट निक्षेप का विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापना से विशेष अधिक ही प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के बंद करके एक आवली बाद अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अपकर्षण करने पर इसका निक्षेप जघन्य अतिस्थापना से नीचे जितना भी अनुभाग प्रस्तार है उन सब में होता है। यानी निक्षेप छोड़कर नीचे जितने स्पर्धक है उन सभी स्पर्धकों में, सभी वर्गणाओं में वो ऊपर के वर्गणा के परमाणु अपना अपना अनुभागहीन होकर उसके साथ मिल जाएंगे। यह स्थिति की बात नहीं, अनुभाग की है, इसलिए उन स्पर्धकों में कहो उन वर्गणाओं में वो मिल जाएंगे। हाँ देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी स्पर्धक है। अब आवली के बाद क्या होता है, यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग है, वो उत्कृष्ट अनुभाग घटकर वे परमाणुओं का अनुभाग घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो किसके समान होगा? तो यहाँ निक्षेप छोड़ दो इतना, तो इस वर्गणा के परमाणु नीचे जितना प्रस्तार यानी जितने अनुभाग स्पर्धक है उन सब में वो मिल जाएंगे। ये निक्षेप है, ये अतिस्थापना है, जघन्य अतिस्थापना, और ये छोड़कर बाकी सारा होगा उसको कहेंगे निक्षेप है। इसको उत्कृष्ट निक्षेप कहा, जघन्य अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षेप, जिसमें दिया जाता है उसको निक्षेप कहेंगे, जिसमें नहीं दिया जाता उसको अतिस्थापना कहेंगे। अभी अतिस्थापना वली नहीं कहना, क्योंकि अभी तो प्रमाण अनंतों का है, वो आवली वाला था
इसलिए
स्थिति में यह मात्र अति स्थापना कहेंगे। विचार करने पर निक्षेप रूप यह अनुभाग प्रस्तार, निक्षेप रूप अनुभाग प्रस्तार यानी जिन वर्गणाओं में जिन अनुभाग वाले परमाणु के साथ ये ऊपर के परमाणु अनुभाग घटकर आए हैं उसको कहेंगे निक्षेप रूप अनुभाग प्रस्तार।
हमने देखा जब भी मिनिमम अतिस्थापना होती है तभी उत्कृष्ट निक्षेप होता है, तो ये उत्कृष्ट निक्षेप का विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापना से विशेष अधिक की प्राप्त होता है। उत्कृष्ट निक्षेप कभी होगा जब भी मिनिमम अतिस्थापना होगी, तो उत्कृष्ट निक्षेप का विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापना से विशेष अधिक की प्राप्त होता है।
हाँ, क्योंकि वो दो एट ए टाइम नहीं है, दो अलग अलग जीवन की बात है ना, या अलग अलग समय की बात है। अभी ये तो हमने पढ़ा नहीं ना, कन्फ्यूजन बहुत होगा, जब विषय आएगा तब हम चर्चा करेंगे, अभी तो मात्र पढ़ना है। यही कारण है कि यहाँ पर उत्कृष्ट निक्षेप को उत्कृष्ट अतिस्थापना से विशेष अधिक बतलाया है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए, उत्कृष्ट अतिस्थापना तो व्याघात में ही प्राप्त होती है, परंतु उत्कृष्ट निक्षेप अव्याघात में ही प्राप्त होता है। इसकी चर्चा अभी हम जो मूल है वहीं करेंगे, अभी तो इतना भी अनुभाग उत्कर्षण पढ़कर फिर हम मूल में चले जाएंगे, क्योंकि आगे के पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि विस्तार से एक एक बात पढ़ेंगे तो ही बात कुछ ख्याल में आ सकती है। ये चार पांच लाइन यहाँ पढ़ लेते हैं अनुभाग उत्कर्षण की। जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण अंतिम स्पर्धकों का उत्कर्षण नहीं होता, जैसे हमने स्थिति में देखा था, उससे बहुत अधिक होगा तो हो सकता है ना, निक्षेप और अतिस्थापना को छोड़कर ऊपर हो सकता है। हाँ, इन दोनों के नीचे जो स्पर्धक है उसका उत्कर्षण हो सकता है, तथा इस स्पर्धक के नीचे जघन्य स्पर्धक पर्यंत जितने भी स्पर्धक है उनका भी उत्कर्षण हो सकता है, मात्र सर्वत्र अतिस्थापना तो एक समान ही रहती है। जैसे पूर्व में हमने आवली प्रमाण देखी थी, अब यहाँ जो यथा योग्य है स्पर्धकों की अतिस्थापना अलग होगी, निक्षेप बढ़ता जाता है। पहले अपकर्षण का निरूपण करते समय जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेप तथा जघन्य अतिस्थापना का जो प्रमाण बतलाया है वही यहाँ पर भी समझना चाहिए। विशेष व्याख्या न होने के कारण यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है, क्योंकि मूल में ही नहीं किया होगा तो यहाँ भी अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है। अब हम आते हैं अपना विषय चलेगा पृष्ठ संख्या 2 से। सूत्र अनुभाग संकमो दुविहो, मूल पैड़ी अनुभाग संकमो च उत्तर पैड़ी अनुभाग संकमो च। अनुभाग संक्रम दो प्रकार का है, मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम। अब गुणधर भट्टारक के मुख कमल से निकले हुए गाथा सूत्र के संकामेदी कदिम वा इस अवयव से संबंध रखने वाले एक गाथा में कितना कितना माल निकाला उन्होंने, उसमें प्रदेश संक्रमण स्थिति संक्रमण सब बातें निकाल रहे हैं। कि शंका मेरी कदिम वा इस अवयव से संबंध रखने वाले अनुभाग संक्रम के विवरण में प्रवृत्त हुए पूज्य चरण आचार्य यति ऋषभ के द्वारा कहे गए और प्रसन्न गंभीर भाव से अवस्थित हुए इस सूत्र का विवरण करते हैं। यानी अभी शंका मेरी कदिम वा इतने मात्र से उन्होंने ये सारा स्थिति संक्रमण अनुभाग संक्रमण प्रदेश संक्रमण की बात है, प्रकृति संक्रमण भी हमने देखी थी। यथा कर्मों की अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाम अनुभाग है, अभी हमने यही परिभाषा देखी थी, यहीं से वहां पर विषय परिचय में लिया है उन्होंने। उसका संक्रम अर्थात अन्य स्वभाव रूप संक्रांत होना अनुभाग संक्रम है। वह मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम के भेद से दो प्रकार का है, क्योंकि संक्रम का तीसरा भेद नहीं उपलब्ध होता। मूल प्रकृतियों में बताएंगे या उत्तर प्रकृति में, दो ही भेद होते हैं। उनमें से मोहनीय संज्ञा वाली मूल प्रकृति का जीव में मोहोत्पादक शक्ति रूप जो अनुभाग है, क्या कहते हैं, ऊपर क्या बताया था, कर्मों की अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति का नाम अनुभाग। अब जयधवला पुस्तक, तो यहाँ तो मोहनी की बात चलेगी। हर एक कर्म के अपना अपना कार्य अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है। तो मोहनी में कौन सी शक्ति है, जीव में मोहोत्पादक, जीव में मोह को उत्पन्न कराना, ये मोहनी कर्म की शक्ति है। देखा ना, मोहनीय संज्ञा वाली मूल प्रकृति का, यानी जिसको हमने मोहनीय प्रकृति कह देते हैं। अभी ये उसके भेदों की चर्चा नहीं है, बस ये मोहनीय कर्म है जब कहेंगे तो उसकी शक्ति का नाम अनुभाग है। तो कौन सी शक्ति है, उसका कार्य क्या है, तो जीव में मोह को उत्पन्न कराना। जीव में मोहोत्पादक शक्ति रूप जो अनुभाग है, उसका अपकर्षण और उत्कर्षण के कारण अन्य अनुभाग रूप परिणाम जानना, यानी जितना अनुभाग है उससे अधिक होना या कम होना। संक्रमण का अर्थ क्या है, जो मोहनीय प्रकृति है वो मोहनीय तो ज्ञानावरण रूप नहीं हो जाएगी। यहाँ प्रकृति संक्रम की बात ही नहीं है, यहाँ तो अनुभाग संक्रम की बात है। तो जो मोहनीय की मोह उत्पन्न करने की शक्ति है, उस शक्ति कम होना या अधिक होना, उसको कहेंगे मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम। उत्तर प्रकृतियों की यहाँ बात नहीं, पहले में पहले मूल पर घटाएंगे। तथा मिथ्यात्वादी उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग का अपकर्षण अकर्षण हुआ है, अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रम के द्वारा। ये मिथ्यात्व की बात, पर प्रकृति रूप कब होती है प्रेरणा बेन, हाँ सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमती है तो वो पर प्रकृति रूप हो जाती है। तो अन्य अनुभाग रूप परिणमन होना उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम कहलाता है। इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुआ अनुभाग संक्रम इस समय विशेष व्याख्या के लिए अवसर प्राप्त है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। व्याख्या कहते तो मराठी में तो परिभाषा को व्याख्या कहते, वो बात नहीं, व्याख्या यानी स्पष्टीकरण। हिंदी में व्याख्या जब कहेंगे तो उसकी व्याख्या करना है ना, उस पर
डेफिनेशन नहीं
स्पष्टीकरण। अच्छा। व्याख्या शब्द का डेफिनेशन अर्थ मराठी में होता है, मराठी में हम कहते हैं, गुजराती में भी ऐसा ही है, परंतु हिंदी में जब व्याख्या क्या है उसकी ऐसा पूछेंगे तो उसका विशेष स्पष्टीकरण ऐसा अर्थ होता है, और डेफिनेशन हाँ। के लिए परिभाषा शब्द आता है। परिभाषा के अर्थ में व्याख्या नहीं, व्याख्या है उसका स्पष्टीकरण। यहाँ लिखा ना विशेष व्याख्या के लिए अवसर प्राप्त है, उसके ऊपर विशेष व्याख्यान विवरण उसका स्पष्टीकरण विशेषार्थ। अनुभाग संक्रम का अर्थ स्पष्ट है, यहाँ पर जिस बात का स्पष्टीकरण करना है वह यह है कि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रम नहीं होता। प्रकृतियों की बात है, मोहनीय पलट कर ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम के लक्षण कथन के प्रसंग से वह अपकर्षण और उत्कर्षण इनके आश्रय से होता है यह कहा है। किंतु उत्तर प्रकृतियों में अपनी जाति के भीतर वो इंटरकास्ट नहीं चलेगा, अपनी जाति के भीतर है दर्शन मोनी वो चारित्र मोनी
नहीं होगी।
परस्पर संक्रम होने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए उसके लक्षण कथन के प्रसंग से वह अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रम इन तीनों के आश्रय से होता है, यह कहा है। क्या कहा, यह समझ में है? मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम का लक्षण क्या बताया?
मोक्ष उत्पन्न करने की
मात्र उत्कर्षण या अपकर्षण होना। वहां पर डेफिनेशन पर प्रकृति संक्रमण नहीं ली। उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम में तीनों लिए, अपकर्षण भी, उत्कर्षण भी और पर प्रकृति संक्रम। पर प्रकृति ने सजातीय अन्य प्रकृति, ये उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग संक्रम में हो सकता है, मूल प्रकृतियों में नहीं होता। तो मूल प्रकृतियों में अनुभाग संक्रम कहेंगे तो मात्र उसका उत्कर्षण अपकर्षण ही समझना, यही विशेषार्थ में और क्लियर होगा। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं तीसरी लाइन, ये दूसरी से लेते हैं। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम के लक्षण कथन के प्रसंग से वह अपकर्षण उत्कर्षण इनके आश्रय से होता है। अपनी भाषा में मूल प्रकृतियों में अपकर्षण उत्कर्षण ही होता है अनुभाग का, और उत्तर प्रकृतियों में अपनी जाति में परस्पर उसका संक्रमण हो सकता है, इसलिए उसका लक्षण बताते समय क्या कहा, अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रम। ये बात ख्याल में आई? मूल प्रकृतियों का अनुभाग संक्रमण जब कहेंगे तब मात्र उसका अपकर्षण या उत्कर्षण ही वहां संभव है। जब उत्तर प्रकृतियों में अनुभाग संक्रम कहेंगे तो उनमें अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रम, ये तीनों ही वहां ले लेना।
क्या ऊपर बताया मोहनीय संज्ञा वाली मूल प्रकृतियों में जीव में मोहोत्पादक शक्ति रूप जो अनुभाग है, तो मिथ्यात्व में तो मोह का उत्पन्न करने वाली शक्ति को बताए गए, तो सम्यक्त्व में भी वो मोह को उत्पन्न करने वाली शक्ति,
मोह को है ना, दर्शन मोहनीय ही है, वहाँ भी दोष तो होते हैं, चर्म लगा तो दोष है ही, उसका अनुभाग कम हुआ है, मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर ही यह प्रकृति तैयार हुई है। तो मोह का उत्पन्न होना तो है ही है। जैसे हमने ये मंदिर बनाया है, दो मंदिर है, तो किस मंदिर में जाएगा? अपना मंदिर बनाया हुआ दूर है और दूसरा पास है, उसके प्रति विशेष लगाव कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुदेव को बज रहा है, तो वैसे दोष हो सकते हैं वहां पर।
आप दिल्ली गए? अगर हमने मूर्ति स्थापित की उसके दर्शन नहीं किया?
हाँ, ये हमारे प्रतिमा है, हमने ये अरिहंत भगवान को स्थापित किया, तो उसके प्रति विशेष लगाव होना। अभी अरिहंत अरिहंत में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है, ये पारसनाथ और शांतिनाथ में कौन ज्यादा शांति देते हुए,
पर तो उसमें भी फर्क है ना, नित्यात्व वो गलत मोह है और ये मोह है,
फर्क है क्योंकि वो प्रकृति अलग अलग है,
वो सम्यक्त्व तो मारक नहीं,
नित्यात्व
तो देश घाती है ना, देश घाती है, अघाती तो नहीं कहा, क्या कहा, देश घाती तो कह दिया उसको, यानी कुछ तो कार्य है कि नहीं वहां पर, मिनिमम पॉसिबल कुछ तो वहां कार्य तो चल रहा है उसका, नहीं तो उसको क्षायिक समय दृष्टि कहते हैं, सम्यक प्रकृति के उदय होते हुए भी, परंतु ऐसा तो है ही नहीं है। क्षायिक नाम तभी कहलाएगा जब वो पूरे उसकी सम्यक प्रकृति का भी क्षय हो जाता है। हाँ, देखो अब तीन नंबर का पेज, अनुभाग संक्रम के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अर्थपद कहते हैं, क्योंकि अर्थपद यानी उसका कोई जो नियम रूप जो कोई कथन होता है, उसके बिना प्ररूपणा करने पर शिष्यों को समझने में कठिनाई जा सकती है। तथ्य अट्ठ पदम, उसके विषय में अर्थपद, ये अभी सूत्र में बता दिया क्या बताने वाले आगे, तत्र अर्थात पहले जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के क्रू रह गया, वहां जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के भेद से दो प्रकार का अनुभाग संक्रम कहे आए हैं, उसका विशेष व्याख्यान करते समय पहले अर्थपद जानने योग्य है, अन्यथा अनुभाग संक्रम विषयक निर्णय नहीं हो सकता, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। अभी अर्थपद कौन सा है वो बात अभी आगे सूत्र में बताएंगे। अणुभागो उक्कडिदो भी संक्रमो, उक्कडिदो भी संक्रमो, अन्न पयड़िम अनिदो भी संक्रमो, अनुभाग संक्रम किसको कहेंगे उसकी परिभाषा यहाँ बता रहे हैं। अपकर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रम है, जो अनुभाग था वो घट गया वो कहेंगे अपकर्षित हुआ है, उसको भी अनुभाग का संक्रम कहेंगे। उत्कर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रम है और अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है। ये तीनों को ही हम अनुभाग संक्रमण संज्ञा से पुकारेंगे। ये तीनों अर्थपद है क्योंकि इनके द्वारा उस अनुभाग संक्रम के स्वरूप का ज्ञान होता है। नहीं तो अनुभाग संक्रम क्या है पता ही नहीं और हम बस देख रहे उसको पढ़ रहे। तो कहते हैं अनुभाग का घटना यानी अपकर्षण होना, बढ़ना यानी उत्कर्षण होना या पर प्रकृति रूप होना, ये सबको अनुभाग संक्रम कहेंगे। यथा अपकर्षण को प्राप्त हुआ अनुभाग संक्रम संज्ञा को प्राप्त होता है क्योंकि अधिक रस वाले कर्मस्कंध का अपकर्षण होने पर हीन रस रूप से विशेष परिणमन देखा जाता है। उसमें अधिक फल देने का जो कार्य होने की शक्ति थी वो भी मंद हुई, कम हो गई। एक अवस्था से दूसरी अवस्था अवस्था हुआ है। इन्हें संक्रम कहना किसको? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप संक्रांत होना, संक्रांत ने पलटना, उसको संक्रम कहते हैं। यह अर्थ यहाँ पर घटित हो जाता है इसलिए इसे संक्रम कहा। इसी प्रकार उत्कर्षण को प्राप्त हुआ और अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में भी पूर्व अवस्था के त्याग द्वारा उत्तर अवस्था की प्राप्ति देखी जाती है। यहाँ पर अपकर्षण उत्कर्षण लक्षण अर्थपद मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम और उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम इन दोनों को विषय करता है। यानी ये जो लक्षण है अपकर्षण उत्कर्षण वाला वो दोनों में ही पाया जाता है, परंतु उत्तर प्रकृति में एक एडिशनल है, कौन सा?
पर
प्रकृति संक्रम। इसलिए इसका इन दोनों के साधारण रूप से निर्देश किया है। पहले अपकर्षण और उत्कर्षण बताएंगे और वो दोनों में कॉमन है, साधारण है ना, सामान्य दोनों में भी पाया जाता है क्योंकि इसकी इन दोनों में प्रवृत्ति होने में कोई बाधा नहीं आती। इन दोनों की प्रवृत्ति होना, यह लक्षण दोनों में ही पाया जाता है। किंतु अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है, यह तीसरा अर्थपद उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम को ही विषय करता है, यानी उसमें ही पाया जाता है क्योंकि मूल प्रकृति में उसकी प्राप्ति असंभव है क्योंकि कोई मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप होती ही नहीं। इस प्रकार अपकर्षण आदि के वश से अनुभाग संक्रम की प्राप्ति संभव है इसका कथन करके उनमें से अपकर्षण का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यानी पहले कहना किसको उसको बताया, अभी अपकर्षण उसमें से बताएंगे। उपकर्षण आए परुवणा, अपकर्षण की प्ररूपणा। अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति रूप संक्रम के तीन भेदों में से अपकर्षण की प्रवृत्ति विशेष का ज्ञान कराने के लिए यह प्ररूपणा की जा रही है। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वचन है। आचार्यों की ये विशेषता है कि ग्रंथ लिख रहे हो, कोई अधिकार नया लिख रहे, कोई नया प्रकरण ले रहे हैं, तो पहले मैंने क्या लिख रहे हैं, क्या विषय है वो बताते हैं प्रतिज्ञा पूर्वक है कि मैं ऐसा लिखूंगा कहूंगा। कि परम फद्दयम न ओकड्डिज्जति, प्रथम स्पर्धक अपकर्षित नहीं होता। प्रथम स्पर्धक किसको कहना? जो नीचे वाला, अति स्थापना नहीं कहेंगे उसको। पहला स्पर्धक है ना नीचे का स्पर्धक, उसको जघन्य स्पर्धक भी कहेंगे, प्रथम स्पर्धक भी कहेंगे, क्योंकि वो तो जघन्य में जघन्य है ना, उसका अपकर्षण कैसे होगा? कुछ निषेक कुछ स्पर्धक छोड़कर अपकर्षण होगा क्योंकि वहां पर अति स्थापना और निक्षेप नहीं देखे जाते। अति स्थापना और निक्षेप, यानी इसके नीचे अति स्थापना होनी चाहिए और उसके
निक्षेप
उल्टा पकड़ा क्या बराबर है। अच्छा, यहाँ से अगर अपकर्षण करना आना है तो जब जब अपकर्षण होता है तो मान लेते यहाँ से अपकर्षण होना है तो उसके नीचे अति स्थापना होगी और अति स्थापना के नीचे निक्षेप होगी। अब यहाँ पहला ही स्पर्धक है नीचे वाला, उसके नीचे कुछ नहीं है ना, ना अति स्थापना है ना निक्षेप है, तो उसका अपकर्षण नहीं हो सकता। द्वितीय फद्दयम न उक्कट डिज्जति, द्वितीय स्पर्धक अपकर्षित नहीं होता क्योंकि वहां पर भी अति स्थापना और निक्षेप का अभाव पहले के समान पाया जाता है। आप कहेंगे दूसरे स्पर्धक में से पहले स्पर्धक में ऐसा नहीं होता क्योंकि अति स्थापना रूप भी वो अनंत स्पर्धक हो गए, दूसरे स्पर्धक के परमाणु नीचे पहले स्पर्धक में आ जावे ऐसा भी नहीं होता है। केवल प्रथम और द्वितीय स्पर्धकों का ही यह क्रम नहीं है किंतु जघन्य अति स्थापना रूप अन्य अनंत स्पर्धकों का भी यही क्रम है। यानी पहले स्पर्धक में से अपकर्षण नहीं होता, दूसरे में से नहीं होता, तीसरे में से नहीं होता, असंख्या स्पर्धकों में से नहीं होता, तो जो जघन्य निक्षेप रूप अनंत है उसमें से अपकर्षण नहीं होगा। अपकर्षण की बात चल रही है यहाँ पर। इस प्रकार इस बात के जताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, हम अभी पढ़ेंगे आगे का सूत्र। क्या देखा अभी हमने, क्या देखा, पहले स्पर्धक का अपकर्षण नहीं होता, दूसरे का भी नहीं होता, तीसरे का भी नहीं होता, चौथे का भी नहीं होता क्योंकि अपकर्षण करने के बाद उसके नीचे जघन्य अति स्थापना रूप अनंत स्पर्धक होने चाहिए, यानी उतने तक जाने पर वो उसका अपकर्षण नहीं होगा। तो कहते एवं अनंतानि फद्दयानि जहन्निया ऐच्छावणा तत्तियानि फद्दयानि न उकड्डिज्जन्ति। इस प्रकार अनंत स्पर्धक जो कि जघन्य अति स्थापना रूप है उतने स्पर्धक, ध के ऊपर रफा देना, उतने स्पर्धक अपकर्षित नहीं होते। यानी केवल शुरू में पहला नहीं होता, दूसरा नहीं होता बता दिया, तो ऐसे अनंत नहीं होते। इस प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा आदि के क्रम से जाकर स्थित हुए अनंत स्पर्धक अपकर्षित नहीं किए जा सकते। शंका, वे कितने हैं, वो अनंत का कुछ प्रमाण क्या है उसका, तो समाधान, जितनी जघन्य अति स्थापना है उतने हैं। इनसे उपरिम अनंत स्पर्धकों का भी अपकर्षण संभव नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। यानी जघन्य अति स्थापना प्रमाण तो स्पर्धकों में से नहीं ही होगा, उसके ऊपर भी अनंत स्पर्धकों का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अति स्थापना मात्र छोड़ेंगे तो निक्षेप कहाँ है नीचे, तो निक्षेप भी तो होने चाहिए ना जघन्य। समझ में आई बात? हाँ। तो ये सूत्र कहेंगे अन्नानि अनंतानि फद्दयानि जहन्न निक्षेव मेत्तानि च न उक्कड्डिज्जन्ति। हमारे यहाँ पर अपकर्षण करना है तो यहाँ से तो नहीं हो सकता क्योंकि अति स्थापना छोड़ने, मान लेते अब अति स्थापना का प्रमाण यहाँ हम चार लेते हैं तो चार का तो अपकर्षण नहीं होगा, तो पांचवे का तो होगा ना? नहीं, उसके नीचे चार तो छोड़ने चाहिए और उसके नीचे देना है, इसलिए मान लेते जघन्य निक्षेप कितना होना चाहिए, तीन है, तो उनका भी अपकर्षण नहीं होगा। तो ये वाले और ये वाले इतना छोड़ दो, फिर ऊपर वाले उसका अपकर्षण हो सकता है। जिसका अपकर्षण कराना है उसके नीचे अति स्थापना भी छोड़नी है और एक दो निक्षेप भी निक्षेप रूप से नहीं चलेंगे स्पर्धक, वे भी अनंत होने चाहिए, तो उसका भी अपकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ के अभी हमने जो पढ़ा था उसका नीचे अर्थ देखते हैं। जघन्य निक्षेप प्रमाण अन्य अनंत स्पर्ध, अन्य शब्द डाला, जघन्य अति स्थापना वाले तो स्पर्धकों का अपकर्षण नहीं होगा नीचे से लेकर उसके ऊपर, जघन्य निक्षेप प्रमाण जो अन्य अनंत स्पर्धक है उसका भी अपकर्षण नहीं होगा। क्योंकि जिस किसी का आकर्षण होगा जिस पर्वत में से, उसके नीचे अति स्थापना भी छूटनी चाहिए और उसके नीचे निक्षेप भी होने चाहिए, मिनिमम पॉसिबल जो कुछ है। एक दो स्पर्धकों में तो निक्षेप नहीं होगा। तो कहते हैं जगन्य निक्षेप प्रमाण अन्य अनंत स्पर्धक भी आकर्षित नहीं होते। प्रारंभ से लेकर यानी नीचे से लेकर जगन्य अति स्थापना प्रमाण स्पर्धकों से आगे का स्पर्धक आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसकी अति स्थापना संभव होने पर भी निक्षेप विषयक स्पर्धक नहीं देखे जाते। यानी मिनिमम पॉसिबल जितनी अति स्थापना है उसके उसको छोड़कर उसके ऊपर के एक स्पर्धक का तो आकर्षण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आकर्षण होगा तो जाएगा किसमें? अति स्थापना छोड़ने के लिए उसके नीचे स्पर्धक है, परंतु जिसमें वो निक्षेप करना है उसका तो अभाव है, इसलिए उसका भी नहीं होता। उससे अनंत उपरिम स्पर्धक भी आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार जघन्य निक्षेप प्रमाण अनंत स्पर्धक आकर्षित नहीं होते। यानी नीचे से जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप, इतने स्पर्धकों का तो आकर्षण ही नहीं होगा, यानी उनका अनुभव घटेगा नहीं। शंका, इसका कारण क्या है? इसको स्थिति के साथ मन में मत कंपेयर करना। ऐसा मत समझना कि वर्तमान वाले कोई उसका अनुभव घटता नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। यह मात्र अनुभव का ही कथन कंसीडर करना है, अनुभव और स्थिति के एक साथ मिलावट मत करना। स्थिति में तो सब बातें ही अलग होती हैं। एक एक निषेक जो है उसमें ये सारे अनुभव वाले परमाणु भी पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक समय में उदय रूप है तो उसका सभी का अनुभव समान होगा, ऐसा नहीं है। किस रूप में उदय में आता है वो बात अलग है। हाँ, स्थिति तो आसान है क्योंकि वो तो हमने बहुत बार सोची हुई है, अभी इसको पढ़ते पढ़ते वो भी समझ में आ जाएगी। तब तो कुछ तो खलास हो जाएगा जब तक तो देखो शंका, इसका कारण क्या है? समाधान, क्योंकि निक्षेप विषयक स्पर्धकों का अभाव है। अब इससे ऊपर अपकर्षण का निषेध नहीं है। यानी किसका अपकर्षण हो सकता है? जगन्य स्थापना और जगन्य निक्षेप प्रमाण जो अनंत स्पर्धक है उसको छोड़कर जो ऊपर के स्पर्धक है उनका अपकर्षण हो सकता है। इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, जहन्नो निथ्यो जहन्निया इच्छावना च तृतीय मित्तानी फद्दयानी आदिदो अधिच्छिदूण तदित्थ फद्दयम ओकड्डिज्जये। प्रारंभ से लेकर जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना प्रमाण जितने स्पर्धक हैं उतने स्पर्धकों को उल्लंघन कर आदिदो यानी पहले से लेकर अधिच्छिदूण उल्लंघन कर वहां जो स्पर्धक स्थित है वह अपकर्षित होता है। पहले में पहले अपकर्षित होने वाला उसका नंबर लगा, फिर उसके स्पर्धक ऊपर के सब अपकर्षित हो गए, परंतु वहां से शुरुआत है। क्योंकि यहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप पूरे देखे जाते हैं। विवक्षित स्पर्धक से पूर्व के जघन्य अतिस्थापना मात्र स्पर्धकों को उल्लंघन कर और उनसे पूर्व के जघन्य स्पर्धक तक के जघन्य निक्षेप प्रमाण स्पर्धकों में वहां पर स्थित स्पर्धक का आकर्षण होना संभव है। अभी हमारी इसमें हम देखेंगे यहाँ का कोई स्पर्धक उसका ये पहले में पहला स्पर्धक है कि जिसका आकर्षण हो सकता है, तो इसका आकर्षण होगा तो इसके परमाणु ये बीच वाले अनंत स्पर्धकों में नहीं दिए जाएंगे, उसको जघन्य अतिस्थापना कहिए, और नीचे जो कुछ है इनमें दिए जाएंगे ये जघन्य निक्षेप है। बीच में छोड़ेंगे, शुरू में बताने के लिए नीचे हमने अतिस्थापना कही थी उससे का आकर्षण नहीं होता, फिर निक्षेप प्रमाण उसका आकर्षण नहीं होता, परंतु जिसका आकर्षण हो रहा है उसका अनुभाग ये बीच वाले स्पर्धकों के समान नहीं होगा। कहाँ? उसके नीचे के सभी स्पर्धकों में इसके परमाणु उस समान अभिनुभाग वाले हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे वो उसमें निक्षेप किया। निक्षेप किया नहीं, कहीं आते जाते तो है नहीं,
अनुभाग कम,
उसका अनुभाग अपने जगह पर घटना, उसको कहेंगे इस रचना के द्वारा हम दिखा रहे। ख्याल में आती ना, हमारे नोटों के भाव, रुपए के भाव कम होते हैं, शेयर के कम होते हैं, तो क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं?
रहते हैं अपने पास ही,
है वहीं पर रहते हैं,
खाली अनुभव कम हो जाता
है, अनुभव कम हो जाता है,
बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बाइंग कैपेसिटी
1000 वाला था और 500 वाला हो जाएगा, तो दूसरा जो 500 वाला था तो उसमें जा मिले कहेंगे हम, वे उसके निक्षेप कहलाएंगे। 1000 का भाव 500 हो गया, तो जो ऑलरेडी 500 थे उसके समान इसके हो गए ना वैल्यू, तो हम उसमें जाके मिले ऐसा कहेंगे हम।
वो तो 500 का भी
नहीं, उसका नहीं घटा, किसी एक विशिष्ट शेयर का घट गया, ऐसा हम समझे ना। ये समझाने के लिए कोई उदाहरण हम बना लेते हैं। बढ़ना उत्कर्षण कहलाता है और घटना अपकर्षण कहलाता है, यही है। अनुभाग का घटना अपकर्षण है, अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण है। हाँ, अब इससे उपरिम स्पर्धकों का कहीं भी अपकर्षण होना बाधित नहीं है। जो हमने पहले में पहले कौन से स्पर्धक का अपकर्षण हो सकता है, तो उसके नीचे अतिस्थापना और निक्षेप, जगन्य निक्षेप है तो उसका अपकर्षण होता है, उसके ऊपर वाले का होगा, उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर होगा, हर एक का होगा, क्योंकि जगन्य अतिस्थापना को ध्रुव करके। अब हम मान लेते हैं इसके नीचे हमने वो जगन्य अतिस्थापना को छोड़ा और नीचे निक्षेप था, अब ये दूसरा उसके ऊपर के स्पर्धक का अपकर्षण होगा, तो क्या होगा, अतिस्थापना तो उतनी की उतनी रहेगी, निक्षेप एक से बढ़ते चले जाएगा, निक्षेप में बढ़ोतरी हो जाएगी, एकदम टॉप वाला उसका अपकर्षण होगा तो उसके नीचे अतिस्थापना छोड़ दो और उसके सर्वत्र नीचे उसका निक्षेप होगा। अभी यहाँ तो कोई उदयावली का सवाल नहीं है, यहाँ लिखा ना, इससे उपरिम स्पर्धकों का कहीं भी अपकर्षण होना बाधित नहीं है। कहीं भी होना बाधित नहीं है, सबका अपकर्षण होता है, निक्षेप कहाँ होता है उसकी बात नहीं है, ऊपर के स्पर्धकों का अपकर्षण होता है, सबका होता है, क्योंकि जघन्य अतिस्थापना को ध्रुव करके, यानी ये अतिस्थापना उतनी की उतनी रहेगी, जघन्य निक्षेप की उत्तरोत्तर एक एक स्पर्धक के क्रम से वृद्धि देखी जाती है, या निक्षेप में एक एक वर्गणा की बात नहीं है, एक एक स्पर्धक को, क्योंकि ऊपर से हम स्पर्धकों का अपकर्षण देख रहे हैं ना। इस प्रकार इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तेन परम सौवाणी फद्दयानी ओकडिज्जन्ति। इस स्पर्धक के लिए फद्दयानी शब्द आता है, तेन परम मैंने उससे ऊपर के, अभी जो हमने पहला स्पर्धक जिसमें से अपकर्षण हो सकता है, ऊपर के सभी स्पर्धक अपकर्षित होते हैं, ओकडिज्जन्ति, उससे आगे सब स्पर्धक अपकर्षित हो सकते हैं। तेन परम अर्थात उस विवक्षित स्पर्धक से आगे के उत्कृष्ट स्पर्धक तक के सभी स्पर्धक अपकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपकर्षण रूप से प्रवृत्ति होने में कोई निषेध नहीं है। अब इसी का विशेषार्थ, अनुभाग की दृष्टि से अपकर्षण का क्या क्रम है, इसका विचार यहाँ पर किया गया है। इस संबंध में यहाँ पर जो निर्देश किया है उसका भाव यह है, प्रथम जघन्य स्पर्धक से लेकर अनंत स्पर्धक तो जघन्य निक्षेप रूप होते हैं, अतः उनका अपकर्षण नहीं होता। अभी समझाते समय वो निक्षेप को पहले ले लिया, क्योंकि नीचे निक्षेप और उसके ऊपर अतिस्थापना होगी, उसके आगे अनंत स्पर्धक अतिस्थापना रूप होते हैं, अतएव उनका भी अपकर्षण नहीं होता। उसके आगे उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत जितने स्पर्धक होते हैं उन सब का अपकर्षण हो सकता है, किंतु इतनी विशेषता है, अतिस्थापना के ऊपर प्रथम स्पर्धक का आकर्षण होकर उसका निक्षेप अति स्थापना के नीचे जिन स्पर्धकों में होता है उनका परिमाण अल्प होता है, अतएव उनकी जघन्य निक्षेप संज्ञा है। यानी जहां से पहले में पहला जिस स्पर्धक में से नीचे आते हैं वहां तो अति स्थापना जो है वो तो ध्रुव अति स्थापना है, और उसके जो नीचे निक्षेप है वो मिनिमम पॉसिबल है। उसके आगे निक्षेप एक एक स्पर्धक बढ़ने लगता है, परंतु अति स्थापना पूर्ववत बनी रहती है। ये बात ख्याल में आ रही है? अति स्थापना को छोड़कर नीचे उसके सर्वत्र दिया था, अति स्थापना उतनी की उतनी रहेगी। अब ऊपर ऊपर के स्पर्धकों का आकर्षण हो रहा है, अब अति स्थापना तो उतनी रहेगी और यहाँ निक्षेप बढ़ते चले जाएंगे, जिनमें देना है उसको निक्षेप कहेंगे। हाँ वही तो
फिर अभी ये जो दिखा है उसमें खाली अति स्थापना दिखाया, बाकी नीचे निक्षेप
पहले बताया ना। देखो यहाँ बता
वो डिफरेंट है।
नहीं
नहीं वही बात
वही है। बात देखो कहाँ दिया जाएगा, निक्षेपों में दिया जाएगा, जघन्य निक्षेप तो जघन्य निक्षेप भी छोड़ो, जघन्य अति स्थापना भी छोड़ो, और ऊपर के जो स्पर्धक है उसका आकर्षण होगा। आकर्षण होगा यानी इसमें नहीं दिया जाएगा, और जिसमें दिया जाएगा उसको हम निक्षेप कह रहे हैं। जिन स्पर्धकों में आ मिलेंगे उनको हम निक्षेप कहेंगे, और जिसमें अपने अपने नीचे ये अति स्थापना कहलाएगी। अब यहाँ हमने इसके लिए अति स्थापना ये है, और सबसे ऊपर टॉप में चले जाओ उसकी अति स्थापना क्या है, उसके नीचे के स्पर्धक। हाँ हर एक स्पर्धक के लिए अपने नीचे अति स्थापना होगी। अभी ये जो यहाँ पर उसका प्रमाण उतना का उतना है। देखो अभी इसके लिए ये अति स्थापना है, अब टॉप मोस्ट स्पर्धक लेंगे उसके लिए तो ये निक्षेप है। इसमें भी ऊपर यानी इसमें यहाँ का माल यहाँ नहीं दिया गया, परंतु ऊपर के स्पर्धक में से यहाँ भी आ मिलेगा, तो अति स्थापना हर एक स्पर्धक के अपने अपने नीचे है। कोई एक अति स्थापना फिक्स नहीं है कीजिए। हाँ एकदम टॉप मोस्ट वाली जो है वहाँ तो कुछ माल नहीं दिया जाएगा कहीं से भी, उसके नीचे सर्वत्र हो जाएगा। समझ में आती ना, टॉप मोस्ट स्पर्धक है उसके नीचे की जो अति स्थापना है उसमें से माल नीचे तो जाएगा, आकर्षण उसका होगा, परंतु उसमें आय नहीं होगा, आय यानी उसमें कोई आ नहीं मिलेगा, वो निक्षेप रूप नहीं होगा। नीचे के सारे जो है जो अति स्थापना है किसी के लिए वो किसी अन्य स्पर्धक के लिए निक्षेप भी है, यानी उसके उसमें माल ऊपर से आता भी है रहता है। निक्षेप जगन निक्षेप संज्ञा है। उसके आगे निक्षेप एक एक स्पर्धक बढ़ने लगता है, परंतु अति स्थापना पूर्ववत बनी रहती है। किंतु जिस स्पर्धक का आकर्षण विवक्षित हो उसके पूर्व अनंत स्पर्धक अति स्थापना रूप होते हैं, और अति स्थापना से नीचे सब स्पर्धक निक्षेप रूप होते हैं। अब सब स्पर्धक कहा, क्योंकि अति स्थापना को ध्रुव रखना है, नीचे के जितने सारे हैं वो सारे निक्षेप कहलाएंगे, बिल्कुल प्रथम स्पर्धक तक वो सभी वो स्थिति के जैसा वो उदीर्णा वाला वो मत ध्यान में रखना। उदाहरणार्थ एक कर्म में कुल स्पर्धक 16 है, चलो इन्होंने संदृष्टि बनाई, उनमें से यदि प्रारंभ के 4 स्पर्धक जघन्य निक्षेप है और 5 से लेकर 10 तक 6 स्पर्धक अति स्थापना रूप है, तो 11वें स्पर्धक का आकर्षण होकर उसका निक्षेप 1 से 4 तक के 4 स्पर्धकों में होगा।
इसे हमने आगे तो नीचे देखा ना कि ये अति स्थापना और जघन्य निक्षेप वो समान है, यहाँ पे ये 4 और 6 अलग अलग ये
समान है। कहाँ लिखा है?
आगे के पेज पे हमने ऐसा पढ़ा
ना,
नहीं
समान था ही नहीं। अति स्थापना सर्वत्र उतनी की उतनी रहेगी, सर्वत्र अति स्थापना का प्रमाण 6 रहेगा। यहाँ पर 12वें यानी 11वें का अपकर्षण होकर 1 से 4 में आ जाएगी, 12वें स्पर्धक का अपकर्षण होकर उसका निक्षेप 1 से 5 तक के 5 स्पर्धकों में होगा, निक्षेप बढ़ेगा आगे, अति स्थापना उसके अपने नीचे चार छह वाली होगी, हरेक के अपने नीचे छह स्पर्धक छोड़ना है। तेरहवें स्पर्धक का आकर्षण होकर उसका निक्षेप एक से छह तक के छह स्पर्धकों में होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक स्पर्धक के प्रति निक्षेप भी एक एक बढ़ता हुआ सोलहवें स्पर्धक का आकर्षण होकर उसका निक्षेप एक से लेकर नौ तक के नौ स्पर्धकों में होगा। यानी सोलहवें का हो रहा है उसके नीचे छह छोड़ देना और उसके नीचे नौ में दे देना, नौ छह पंद्रह और वो सोलह। स्पष्ट है अति स्थापना सर्वत्र परिमाण में तदवस्थ रहती है, मात्र उसका प्रमाण उतना का उतना है, किंतु निक्षेप उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता जाता है। किसी विशिष्ट स्पर्धक का नाम अति स्थापना नहीं है, जिसका आकर्षण होना है उसके नीचे विशिष्ट नंबर ऑफ स्पर्धक उसको अति स्थापना कहेंगे। यह अंक संदृष्टि है, इसी प्रकार अर्थ संदृष्टि समझ लेनी चाहिए। अर्थ संदृष्टि में यथार्थ में भी ऐसा ही समझना चाहिए। अब जघन्य निक्षेप आदि पदों के प्रमाण विषयक निर्णय को उत्पन्न करने के लिए अल्प बहुत्व का कथन करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। इन्हें वो कौन सी कम है ज्यादा है वो हमें ख्याल में आ सकेगा। एथ अप्पा बहुवम, यहाँ पर अल्प बहुत्व प्रकृत में अपकर्षण संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट अस्थि स्थापना तथा निक्षेप आदि के तथा उसमें उपयोगी पड़ने वाले पद विशेषों के अल्प बहुत्व को बतलाते हैं। इस प्रकार यह पातनिका सूत्र है।
यहाँ पे प्रतिस्थापना को भी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों बताया,
बताएंगे ना अभी हम देखेंगे। पातनिका सूत्र है ने क्या स्थिति के स्थिति के बाद अनुभाग आया ना, इसलिए फिर हम तो उसी की बात सोचते रहते हैं। पातनिका सूत्र समझते हो? देखो जयसेनाचार्य की विशेषता हमने उनके जो टीकाएं पढ़ी है ना उसमें वो पहले में पहले एक अधिकार समाप्त हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो इस प्रकार पातनिका है कहते हैं। यानी जो एक विषय से दूसरे विषय में जो कंटिन्यूटी है, इस प्रकार यह पातनिका सूत्र है। यानी आने वाले विषय को सूचित करने वाला ये सूत्र है। वो तो हमेशा पहले अधिकार के शुरुआत में बताते थे इतनी गाथा है उसमें ये चार गाथाओं द्वारा ये समझाएंगे, आठ बताएंगे, ये समझाएंगे, उसके बाद ये होगा, ये पहले जो बताते थे उसको कहेंगे पातनिका। तो ये भी पातनिका सूत्र है कि यहाँ पर अल्प बहुत्व है, यानी अभी ये विषय चलने वाला है। सवत थोवाणी प्रदेश गुणहानी ठानंतर फद्दयाणी, प्रदेश गुणहानी स्थानांतर सबसे स्तोक है, जिसको हम अनुभाग की गुणहानी कहेंगे। वह अनुभाग आधा नहीं हो रहा है, अनुभाग में जो स्पर्धक रचना है उसमें प्रतिवर्गणा प्रदेश यानी परमाणु की संख्या विशिष्ट चय से घटती चली जाती है, जहाँ जाके आधी होती है वहाँ तक के जितने स्पर्धक है जो अनंत होते हैं उसको कहेंगे एक गुणहानि, उसी का नाम है प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, वो सबसे स्तोक है। शंका, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर किसे कहते हैं? जिस स्थान पर प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा अवस्थित विशेष हानि रूप से अवस्थित विशेष हानि है चय हानि अवस्थित विशेष है चय, कौन सा चय? वही का वही चय, चय अलग अलग नहीं है, वही फिक्स चय है। अवस्थित विशेष हानि रूप से जाती हुई यानी प्रतिवर्गणा परमाणुओं की संख्या विशिष्ट प्रमाण में कम होती चली जाती, वो प्रमाण तो वही का वही रहता है इसलिए उसको अवस्थित कहा। दुगुनी हीन हो जाती है, दुगुनी हीन का अर्थ क्या है हमने देखा? आधी हो जाती है। उस अवधि तक के अध्वान को, अध्वान यानी उसका प्रमाण, उसका गुणहानि स्थानांतर कहते हैं। यहाँ तो नंबर ऑफ स्पर्धक कहेंगे, उसमें कितने स्पर्धक जाने के बाद ये आधा हुआ, तो उतने स्पर्धकों की जो संख्या है उस संख्या को यहाँ गुणहानि कहते हैं। इस प्रदेश गुणहानि स्थानांतर में अभव्यों से अनंत गुणे अनंत स्पर्धक होते हैं। कौन सा वाला अनंत है? अभव्यों से अनंत गुणे वाला अनंत। वे सबसे स्तोक है, यह सबसे छोटा में छोटा अनंत है यहाँ पर। अब कहते जहन्नो निखेवो अनंत गुणों, उनसे जघन्य निक्षेप अनंत गुणा है, क्योंकि जघन्य निक्षेप में अनंत अनुभाग प्रदेश गुणहानियां संभव है। वो
अनंत
मात्र जघन्य निक्षेप में, पूरी टोटल अनुभाग रचना में हो गए तो वो तो ठीक है, परंतु जिसमें दिया जाता है ऐसे जो जघन्य निक्षेप है
अनंत गुणा,
उसमें केवल अनंत स्पर्धक नहीं कहे,
अनंत गुणा,
अनंत गुणहानियां पाई जाती है। यह कैसे जाना? इसी सूत्र से जाना। जहन्य इच्छावना अनंत गुणा, ओहो ये समझ में है ना? आपने आपका प्रश्न था ना, जगन अति सपना समान हो, समान नहीं है उससे अनंत गुणा, उससे जघन्य अति स्थापना अनंत गुणी है। देखो तीन देखे हमने, पहले में पहले प्रदेश गुणा स्थानांतर है अनंत, फिर भी सबसे छोटा है जघन्य निक्षेप, उससे अनंत गुणा है, और जघन्य अति स्थापना उससे भी अनंत गुणी है, क्योंकि जघन्य निक्षेप में जितने गुणहानि स्थानांतर उपलब्ध होते हैं, जितने गुणहानि स्थानांतर के लिए मंजूबेन आपको एक शब्द लेना है, नाना गुणहानि, बहुत अच्छा, यानी जितनी नाना गुणहानियां होती है उपलब्ध होते उनसे भी अनंत गुणे गुणहानि स्थानांतरों को विषय कर इसकी प्रवृत्ति हुई है। यानी केवल स्पर्धक अनंत होते ऐसा नहीं, जघन्य निक्षेप में जितनी गुणहानियां है कितनी है तो अनंत है, उससे भी अनंत गुणे गुणहानियां इसमें होती है जघन्य अति स्थापना में। उक्कस्यम अनुभाग कंडयम अनंत गुणम, एक गुणम वाली बिंदी नहीं दिख रही है, अस्पष्ट है। उससे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक अनंत गुणा है। उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का अर्थ क्या है? ऊपर के इतने स्पर्धकों का नाश होकर उसका अनुभाग नीचे सर्वत्र उसके समान हो जाएगा, उसको कहेंगे अनुभाग कांडक। ये चार नंबर पर आया, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभागों का उत्कृष्ट अनुभाग कांडक रूप से ग्रहण किया गया है। जब उत्कृष्ट अनुभाग कांडक होता है तो अनंत वा भाग शेष रहता है, स्पर्धक अनंत वे भाग प्रमाण रहते हैं, और अनंत बहुभाग एक कांडक रूप से नाश होता है, उसको उत्कृष्ट कांडक कह दिया। उक्कस्या इच्छावणा एगाय वगणाय ऊणिया, उससे उत्कृष्ट अति स्थापना एक वर्गणा प्रमाण न्यून है, अल्पभूतों में न्यून को क्यों बताएं?
अभी तक तो हमने अतिस्थापना तो समाधि देखी थी, अभी यहाँ पे
जघन्य अतिस्थापना ध्रुव अतिस्थापना सर्वत्र समान है।
हाँ।
यहाँ विशेष बात बता रहे, उत्कृष्ट अति स्थापना एक वर्गणा प्रमाण न्यून है।
एक वर्गणा मीन्स
स्पर्धक में जो वर्गणाएं होती है उसकी बात है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थापना उत्कृष्ट अति स्थापना अंतिम वर्गणा से न्यून उत्कृष्ट अनुभाग कांडक प्रमाण होती है। देखो ये पढ़ेंगे, मैं मेरी भाषा में बताने के बदले इसको पढ़कर बताऊंगी। मैंने भी पढ़ा नहीं ये पुस्तक। हाँ, फिर भी जब अनुभाग कांडक होता है तो क्या होगा? अनुभाग कांडक का अर्थ क्या है? जैसे हम स्थिति कांडक की बात इमेजिन करते हैं, स्थिति कांडक घात होता है तो क्या होता है? उतने स्थितियों में से नीचे परमाणु आते थे, हर समय आते रहते थे, और जब अंतिम फाली होती तो क्या होता था?
पूरा
कांडक हो जाता था। तब जब भी कांडक घात होता था तो ऊपर के निषेकों में से क्या उसी कांडक में परमाणु आते थे जब अंतिम फाली फिर रही? तब
नहीं, नीचे की स्थिति में आते थे ना?
वो तो उसका नाश होने वाला है ना।
हाँ।
सारे के सारे नीचे आएंगे, तो उसके लिए अति स्थापना कितनी होगी? कांडक प्रमाण होगी। नहीं समझे? अभी देखो ये इतने अनंत है, अभी इतने सारे को हमने एक कांडक कहा, तो कांडक का अर्थ क्या है? एक अंतर्मूर्त में इसमें से थोड़े परमाणु नीचे के अनुभाग वाले हो गए, फिर थोड़े हुए। अब यहाँ समयों में नहीं गिनना है,
यानी
इसमें नीचे के कुछ जाने का सवाल नहीं है। तो यहाँ के जो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा है उसके परमाणु इसके नीचे सर्वत्र यहाँ इसका निक्षेप होगा, क्योंकि बीच में कांडक है, इसमें से इसमें ही चले जाएंगे तो इसको कांडक क्यों कौन कहलाएगा? तो जब कांडक घात होता है तो ये ऊपर की वर्गणा के लिए, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के लिए बीच में नीचे कितनी वर्गणाएं छोड़ी है? ये सारे ही स्पर्धक छोड़े हैं।
हाँ।
सारे स्पर्धक ने केवल एक वर्गणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस वर्गणा के परमाणुओं के लिए इन सब को उल्लंघन कर नीचे उसका निक्षेप हुआ है
अनुभाग,
तो इसके लिए ये सारी क्या कहलाएगी? अतिस्थापना कहलाएगी। तो वो कितनी है? ये सारे को छोड़ा है, ऊपर की वर्गणा की बात है, तो ये पूरे कांडक में से एक वर्गणा कम कर दो, इतना उसका उत्कृष्ट अतिस्थापना का प्रमाण होगा। कांडक जितना, कांडक में ऊपर की बात की हमने, तो ऊपर वाला जो ऊपर के स्पर्धक की ऊपर की वर्गना है उसके परमाणु इन पूरे कांडक वालों को छोड़कर नीचे उसका निक्षेप होगा, तो ये क्या कहलाएगा? उसके लिए अतिस्थापना कहलाएगी। ये उत्कृष्ट अतिस्थापना है, कांडक घात में वो उत्कृष्ट होगी, अदरवाइज वो जो फिक्स जघन्य अतिस्थापना है वो तो सर्वत्र होती है, वो सामान्य अपकर्षण में होती है। जब कांडक रूप से अपकर्षण होता है तो जितना बड़ा कांडक उतनी बड़ी अतिस्थापना, तो जब कांडक उत्कृष्ट होगा तो अतिस्थापना भी उत्कृष्ट होगी, क्योंकि सर्वत्र कांडक का प्रमाण वही का वही नहीं रहता है। चल में है अभी बात, देखो अभी हम 8 पेज पर आए हैं, क्योंकि उत्कृष्ट अतिस्थापना अंतिम वर्गणा से न्यून उत्कृष्ट अनुभाग कांडक प्रमाण होती है। तो कैसे उसका समाधान? उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के पतन के समय अंतर्मूर्त प्रमाण द्विचरम आदि अधस्तन फालियों में सर्वत्र पूर्वोक्त प्रमाण जघन्य अति स्थापना ही होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो पूरा कांडक हमने देखा है, पहले समय में इसका अपकर्षण हो रहा है, कांडक रूप से तो ले लिया है, फिर भी जब कांडक चल रहा है
तभी अतिस्थापना,
इस सब में तो नीचे आ ही रहा है परंतु उसमें अपने अपने नीचे भी उसका सर्वत्र निक्षेप हो रहा है,
अतिस्थापना को छोड़ के,
जघन्य अतिस्थापना को छोड़कर, यानी कांडक के अंदर अंदर भी उसका निक्षेप हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। अंतिम फाली के समय क्या होगा?
पूरा कांडक नष्ट,
पूरा कांडक के उसमें वो नहीं जा सकता, उसके नीचे चला जाएगा। जब द्विचरम का अर्थ क्या है? एक कांडक का घात होने के लिए 10 समय लगेंगे, तो पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, इनमें से तो निकल ही रहा है, परंतु इसका जो ऊपर की वर्गना की बात करेंगे, इसका जो द्रव्य है उसका अनुभाग घटकर कांडक के अंदर वाले स्पर्धकों में भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, जब अंतिम फाली खिरने का समय आया है तो इन सभी का जो कुछ रिमेनिंग द्रव्य है
नीचे के,
वो सबका सब एक साथ नष्ट है, उसका अनुभाग नष्ट होकर नीचे के अनुभागों में आ मिलेगा। तो अभी ये सर्व नष्ट होने वाला है, तो इसका जो माल है तो यहाँ सर्वत्र नहीं दिया जाएगा, तो उसको कहेंगे ये अति स्थापना है। कांडक का पहला दूसरा तीसरा समय द्विचरम तक तो जघन्य अति स्थापना प्रमाणी ध्रुव अति स्थापना होगी, परंतु जब अंतिम फाली है कांडक रूप से नष्ट होने वाला है तो उसके अंदर कांडक के अंदर तो उसका कैसा होगा, कांडक तो उसी समय नष्ट होने वाला है, तो उसके लिए पूरे कांडक प्रमाण अति स्थापना कहलाएगी। ये उत्कृष्ट किसके लिए, ऊपर की वर्गना के लिए, ऊपर से दूसरी वर्गना के लिए
एक
दो कम कांडक, तीसरी के लिए तीन कम कांडक, इसके अपने नीचे जो है अभी आखे पूरे ऊपर के स्पर्धक के लिए, नीचे जितने स्पर्धक है उतने उसके लिए अति स्थापना रूप कहलाएगी। अभी हम इसको पढ़ेंगे, देखो उत्कृष्ट उत्कृष्ट हुआ उत्कृष्ट तो रह गया उसमें, उत्कृष्ट अनुभाग कांडक के पतन के समय, पतन के समय लिया यानी अंतिम समय, यह पतन के समय नहीं जब पहला दूसरा तीसरा चल रहा है, पहले में पहले उसके द्विचरम आदि की बात करते हैं। अंतर्मूर्त प्रमाण द्विचरम आदि अधस्तन फालियों में, यानी अधस्तन फालिया ने अंतिम फाली के पहले वाली फालिया, फाली में नीचे ऊपर नहीं होता, फाली तो सब में से होती है, परंतु पूर्व वाली फाली, पूर्व समय की फाली, सर्वत्र पूर्वोक्त प्रमाण जघन्य अति स्थापना ही होती है, यानी उसका निक्षेप कांडक के अंदर अंदर भी होगा अति स्थापना को छोड़कर, क्योंकि उस समय व्याघात का अभाव है। व्याघात होना यानी वो कांडक रूप से जो नष्ट होना, उसको कहेंगे व्याघात होना। वो कब होता है, अंतिम फाली के समय होता है, परंतु अंतिम फाली के पतन के समय अंतिम स्पर्धक की, अंतिम वर्गणा की उत्कृष्ट अति स्थापना होती है, क्योंकि उसके नीचे जो कांडक का प्रमाण है वो एक को छोड़कर वो सारा अति स्थापना होगा, क्योंकि वहां वो नष्ट होने वाले, जो नष्ट होने वाले उसी में कैसे दिया जाएगा उसी समय, क्योंकि उस समय विवक्षित अंतिम वर्गना को छोड़कर शेष समस्त अनुभाग कांडक का ही वहां पर अति स्थापना रूप से परिणमन देखा जाता है, यानी उस विवक्षित अंतिम वर्गना के लिए वह उत्कृष्ट अति स्थापना कहलाएगी। इस कारण से उत्कृष्ट अति स्थापना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक से एक वर्गना मात्र हीन होती है, और वह अनुभाग कांडक भी उस उत्कृष्ट अति स्थापना से एक वर्गना मात्र अधिक होता है, यह सिद्ध हुआ। अल्प बहुतों में हम उसको पहले कह सकते थे, परंतु उन्होंने पहले अनुभाग कांडक अनंत गुणा बता दिया है, और फिर उत्कृष्ट अति स्थापना एक वर्गना से न्यून है। ख्याल में आई बात, ये क्या कहना चाहते हैं, हाँ वो समझ में नहीं आया, कांडक होता है का अर्थ क्या है। अभी हम वर्गना वर्गना की बात करेंगे ना, एक अंतिम ये एक एक स्पर्धक में ऐसी इतनी इतनी वर्गना है, मान लेते अभी ये तीन का कांडक करेंगे, कांडक कांडक होना यानी क्या, ये सारे नष्ट होने वाले, पर नष्ट कब हो गए, अंतिम समय में, अंतिम फाली जब फिरेगी तब, हर समय थोड़े थोड़े निकल रहे, तो पहले समय में थोड़े निकले, सब में से निकले, कहाँ गए, अपने अपने नीचे की अति स्थापना छोड़कर नीचे सर्वत्र गए। तो यहाँ पर भी पहले समय में यहाँ के जो द्रव्य है वो यहाँ भी दिया गया और नीचे भी दिया गया अति स्थापना को छोड़कर, दूसरे समय में
ऐसा ही हुआ।
ये सर्व विद्यमान है ना, दूसरे समय में भी ऐसा ही अति स्थापना को छोड़कर सर्वत्र, इसे द्विचरम तक हुआ, अंतिम चरम समय में क्या होगा?
पूरा कंडक्ट।
अभी जितना बाकी है वो सारा ही एक फाली रूप से नष्ट होने वाला है। और अपने अभी ये जो नीचे वाला है ना, वो कहाँ चला जाएगा? उसके नीचे अतिस्थापना छोड़कर नीचे आएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? उसकी अतिस्थापना तो इतनी थी, परंतु अभी कांडक नष्ट होने वाला है, तो पूरा कांडक उसके लिए अतिस्थापना कहलाएगा। चरम समय में ऊपर की वर्गना की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा जो नष्ट होने वाला कांडक है वो अतिस्थापना रूप से रखकर उसके नीचे उसका निक्षेप होगा। परंतु कांडक के जो नीचे वाली वर्गना है उसके लिए अतिस्थापना ही नीचे, कांडक के नीचे जो है
जगत अतिस्थापना,
वो उसके लिए अतिस्थापना होगी और उसके नीचे उसका स्पर्ध। तो इसलिए उत्कृष्ट अतिस्थापना किसके होगी? अंतिम स्पर्धक के, अंतिम वर्गना के, वो भी कांडक घात के अंतिम समय में। और वो भी कांडक घात कौन सा? उत्कृष्ट कांडक लिया है, उत्कृष्ट अतिस्थापना समझानी थी इसलिए।
अनुभव का कम होना, अरे पाली रूप जो कम होता है
हाँ।
वो प्रति समय होता है कि आपने बताया अंतर्मुख अंतर्मुख होता है प्रति, ये जो कांडक होता है
कांडक है उसके लिए अंतर्मुहूर्त लगता है
हाँ। अच्छा अंतर लास्ट समय में
अंतर्मुहूर्त लगता है कांडक घात होने के लिए, कांडक घात होता है ना
हाँ।
प्रति समय अनुभव के घटना वो बात यहाँ नहीं होती है, जिसको अनुसमय अपवर्तन कहते हैं वो श्रेणी में होता है
हाँ।
उसकी बात यहाँ नहीं है। जैसे स्थिति कांडक घात होते हैं, एक बार स्थिति कांडक घात होते हैं उसके अंदर अंदर अनुभाग कांडक घात हजारों बार होते हैं, यानी उसका समय भी छोटा है, उसमें स्पर्धक भी अनंत होते हैं। विशेष आस्पर्ध है इसका, ये पूरा पढ़ा ना हमने हाँ। विशेषार्थ उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभाग कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय अंतिम वर्गना की ही होती है। यह अंतिम वर्गना के लिए उत्कृष्ट अतिस्थापना कहलाएगी, जितना नीचे आएंगे उतनी अतिस्थापना कम कहलाएगी उसकी। चूंकि उत्कृष्ट अनुभाग कांडक में यह अंतिम फाली की अंतिम वर्गना भी सम्मिलित है, अतः यहाँ पर उत्कृष्ट अतिस्थापना को उत्कृष्ट अनुभाग कांडक में से अंतिम वर्गना को कम कर देने पर जो शेष रहे तत् प्रमाण बतलाया है। ये ख्याल में आई बात? कारण यह है, जब अंतिम फाली का पतन होता है तब उसका निक्षेप उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को छोड़कर ही होता है, यानी उतना पूरा अंतिम वर्गना जो है वो पूरा कांडक छोड़कर नीचे उसका निक्षेप होगा। तो जितना रिमेनिंग कांडक है उसको उसके अलावा जो नीचे वाला वो सब के सब उसके लिए उस एक वर्गना के लिए अतिस्थापना कहलाएगा, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय अगर कांडक के अंदर भी निक्षेप होगा तो उसका अभाव कैसे होगा? तो कांडक घात कैसे कह सकते हैं उसको? इसलिए सूत्र में उत्कृष्ट अनुभाग कांडक जितना बड़ा होता है उसमें से विवक्षित अंतिम वर्गना को कम कर देने पर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अतिस्थापना का प्रमाण होता है, यह कहा है। यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देख हो। अश्विन में
नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्रणम नमो लोहे सभ्यचावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्रणम नमो लोहे सभ्यचावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्रणम नमो लोहे सभ्यचावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो